मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले महावीर भगवान की दस लक्षण पर्व की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सब लोग हमेशा की तरह आज भी जैसा आचार्य भगवंतों ने हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उपदेश दिया है उस पर विचार कर रहे हैं। जो सब परिग्रह से मुक्त होकर सुख और दुख के अवसर पर अत्यंत निर्द्वंद और निश्चिंत होकर के अपना आचरण करता है वो आकिंचन धर्म का पालन करता है। ऐसा ही आकिंचन का भाव हमारे भीतर भी आना चाहिए। हमने सहनशीलता सीखी, हमने विनय और कोमल होना यह भी सीखा, हमने सरल और पवित्र होकर के क्या सच्चाई है उसको जानना, अपने जीवन को संयमित करके इस देह के माध्यम से कर्मों की निर्जरा के लिए जो तपस्या हो सकी वो हमने करी, समस्त जो पर पदार्थ थे उनके प्रति हमने ममत्व भाव छोड़ा, शेष रह गया हमारे पास हमारा शरीर जिसे भी हम अपना मानते हैं। सो ना किंचन अस्ति अकिंचना, मेरा तो शरीर भी नहीं है, ऐसा जो भाव मेरे भीतर उत्पन्न हो गए तब आकिंचन भाव ऐसा धर्म अपने भीतर में आवेगा। आज आकिंचन धर्म पर हम विचार करें। बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तेत्। आचार्य भगवान कह रहे कि इस संसार में बंधन और मुक्ति का कारण तो एक ही है, जो ममत्व भाव जितना पर पदार्थों के प्रति रखता है वह संसार के बंधन को स्वीकार करता है। अगर संसार के बंधन से मुक्त होना है तो जितना निर्ममत्व भाव हो सके अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। निर्ममत्व भाव का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति निर्दय हो जाना ऐसा नहीं है। निर्दयता जैसा है, लेकिन अत्यंत दया भाव से युक्त होकर अपने जो पर पदार्थ, यहां तक कि शरीर भी है, उससे भी ममत्व का भाव, मूर्छा का भाव, गाफिलता का भाव नहीं रखना। अहमे को खलु शुद्धो दर्शनमयो नान, अहमे को खलु शुद्धो, भूल गया, दंशनमयो नान चरित, ऐसा कुछ है, मैं याद नहीं आ पा रहा मुझे। मैं एक अकेला हूं, मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन रूप है, जितने भी दूसरे भाव हैं राग द्वेष के, वो मेरे नहीं है। इस तरह का जो भाव है वह मैं अपने भीतर लाऊं तो मैं सुखी हो सकूंगा। इस तरह का अभ्यास भी अपन को करना चाहिए। पर पदार्थों से ममत्व छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अपनी देह के प्रति ममत्व भाव तो बना ही रहता है। देह पर आने वाले सुख दुख में अपन समता भाव नहीं रख पाते हैं, उसे आत्मा का ही सुख दुख मान लेते हैं, क्योंकि देह के प्रति जिसका जितना ममत्व भाव है, सो देह के माध्यम से जो सुख दुख की अनुभूति होती है, सो उस व्यक्ति को उतनी ही अधिक होगी। और अगर देह के प्रति निर्ममत्व भाव है तो देह पर आने वाले सुख दुख का एहसास हम समता भाव पूर्वक कर लेंगे और सुखी होंगे। एक अकेले हूं तो ही सुख है, दो में तो द्वंद है। निर्द्वंद तो तभी होगा जब कोई एकाकी हो। एक राजा को सुखी होने का बड़ा चाव था कि मैं भी सुखी हूं। सो एक बाबा जी से पूछा कि सुखी होने का क्या उपाय है। सो बाबा जी ने कहा कि देखो, वास्तव में तो सब पदार्थों का त्याग करोगे तो सुखी होगे। राजा ने कही कि जी तो हमसे नहीं बन सकता, आप तो कुछ सरल सा उपाय बताओ। तो कहते ऐसा करो, जिस व्यक्ति को बहुत सुख हुए जीवन में, उसकी पोशाक, उसके कपड़े तुम पहन लो। लियो जी तो बहुत अच्छा है। राजा साहब ने अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को, सबको खोज करने भेजा कि जो अत्यंत सुखी हुए उनके कपड़ा ले आओ, उसकी पोशाक ले आओ। अब सब ढूंढने लगे, जिससे पूछो तो वो ये कहता कि फलाना दुख है, कोई कहता कि वो तो सब ठीक है, फलाना दुख है, तो कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं मिला। जंगल में पहुंचे, ढूंढते ढूंढते तो एक व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न अवस्था में और पेड़ के ऊपर बैठा हुआ कोई बाजा बजा रहा था आनंद से। तो लोगों को लगा कि भाई ये ज्यादा सुखी है। तो उससे पूछा कि भाई तुम खुश हो पूरी तरह अपने जीवन से? उसने कहा हां बिल्कुल खुश, बहुत आनंद है। तो लोगों ने कहा कि चलो हमारी खोज सफल हो गई, ले आओ अपने कपड़े दे पोशाक राजा साहब को। अब जब देखा कि पोशाक के नाम पर तो उसने मात्र एक लंगोटी धारण कर रखी थी, क्या देवे वो पोशाक, सब चकित हो गए। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई जब तक हम पर द्रव्यों के प्रति ममत्व भाव रखेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकेंगे। मैं तो सब प्रकार के जंजाल से, सब प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हूं, सो सुखी हूं। मुझे वस्त्रों की और पोशाक की आवश्यकता क्या है? राजा साहब को भी मुनि महाराज महाराज ने तो ये कहा था, पर देर से समझ में आया कि पोशाक तो पहनने का भाव ही राग का है और नहीं पहनने का भाव तो द्वेष का है। सो राग द्वेष दोनों से रहित होकर के जो अपनी स्वाभाविक अवस्था है उसको प्राप्त करना चाहिए, श्रेष्ठ तो वही है। अपन कर भी लेते हैं अकेलापन, लेकिन ऐसा अकेलापन जिसमें कि पीड़ा होवे, किसी का वियोग हो जावे तो अपन अपने को अकेला मानने लगते हैं और अत्यंत दुखी हो जाते हैं कि देखो हमारे पास था और अब नहीं है। सो नहीं होने की पीड़ा से भरे हुए अपन अकेलेपन का एहसास करते तो हैं। और या फिर दूसरी स्थिति बनती है कि कोई से नहीं बनी, कोई के संग नहीं रह पाए, सो अपने अलग हो गए। तो कोई ने पूछी कि काय कोई नहीं है तुम्हारा, सो कह ले नहीं संसार में कोई कोई नहीं है, सब अकेले अकेले है। तो जो द्वेष बस अकेलापन है वही है, ऐसा भी अपन के जीवन में अकेलापन आता है, लेकिन वास्तव में निश्चिंत और निर्बंध होकर के अपने सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूं, ऐसे प्रकार के भाव अगर अपन रख करके अकेलेपन का गुना अनुभव करते हैं तो वास्तव में अकिंचन धर्म अपने जीवन में तभी प्रकट हो पाएगा। अपन कहते भी हैं कि जीव अकेला है, किस बारे में? अपने सुख दुख के फल को भोगने में। मैं हमेशा कहता हूं कि अत्यंत प्रेम होता अपने बच्चों से मां का, सो बच्चे की पीड़ा में मां अत्यंत दुख का अनुभव करती है, उपाय करना चाहे तो अपने प्राण भी दे दे वे तो भी अपने पुत्र की पीड़ा को एक डिग्री कम नहीं कर सकती। जितना कष्ट उसे अपने कर्मों के उदय में भोगना है सो वो अकेला ही भोगेगा, कोई उसका सहयोगी नहीं। लेकिन क्या करें, हमारा मुंह ये मानता है कि नहीं हम तो दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं, सो भैया सिर्फ निमित्त बन सकते हैं। विनोबा ने लिखा कि सुख बांटो तो दूना हो जाता, दूसरे के सुख में शामिल हो जाओ तो अपना सुख और बढ़ जाता है, और दूसरे के दुख में शामिल हो, दूसरे का दुख सुन लो या दूसरे को अपना दुख सुना दो तो दुख आधा रह जाता, ऐसा गणित है। सो तो संसार में पर सुख दुख का निमित्त हूं मैं मात्र, मैं सुख दुख का कर्ता नहीं हूं, किसी को सुखी और दुखी कर नहीं सकता। यह जो परद्रव्यों के प्रति अपने कर्ता पने के भोगते भोगता पने का और स्वामी पने का भाव है वही संसार का कारण है। एकाकी होने का मतलब है कि हम कर्ता भाव छोड़ें, भोगता भाव और स्वामी पने का भाव छोड़ें और अपना कर्तव्य मान करके अपना जीवन जिए। कर्ता मान करके जीवन भी जीते हैं और कर्तव्य मान करके भी जीवन जीते हैं। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि अपने कर्तव्य भी हम छोड़ दें, देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनको हम दायित्व मान करके ही करेंगे, सबसे अलग थलग कट करके खड़े हो जाने का नाम अकिंचन नहीं है भाई। अत्यंत स्वावलंबन पूर्वक अपना जीवन जीना और दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना, दूसरे से अपेक्षा मदद की नहीं रखना, ये है इसका फल। इस प्रकार अपन अकिंचन भाव को धारण करके और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्या हुआ, ममत्व भाव व्यक्ति के भीतर जागृत हो जाता है तो वो अपने आप को कर्ता और स्वामी मानने लगता है। एक राजा साहब थे, सो उनके छोटा सा बेटा गुम गया, खो गया, नहीं मिला। वर्षों बीत गए, राजा साहब ने एक बार एक युवक को अपने यहां पर काम करने के लिए नौकर रख लिया। सो यह तो नौकर है, ऐसा भाव उसके प्रति रख करके उससे खूब काम करवाने लगे। बहुत अधिक काम लेने की वजह से उस युवक को ज्वर हो गया, बुखार आ गया, बीमार हो गया। बीमारी में राजा साहब का ध्यान जब अपने उस नौकर की तरफ गया, सो हाथ पर बने हुए निशान को देख करके सेठ जी मूर्छित हो गए। निशान पहचान गए कि यह निशान तो मेरे बेटे के ही हाथ पर था, हो ना हो यह नौकर मेरा ही बेटा है जिससे मैं काम लेता रहा, आज बीमार हो गए। अभी तो नौकर जैसा भाव था, सो खूब काम लेते थे, अब उसी के पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन बचा नहीं सके। ज्वर तीव्र होने से प्राणांत हो गया, आप सिर पटक करके रो रहे हैं। भाई ऐसा ही अपन करते हैं, पर द्रव्यों के प्रति ममत्व भाव रख लेते हैं। अगर नौकर को भी अपना कर्तव्य मान करके और ठीक से उसका जो भरण पोषण करने के लिए योग था वो दिया होता तो काय को ऐसी स्थिति आती। जब ममत्व भाव जागृत हुआ, मेरा पुत्र है, सो सब सेवा टहल करने लगे। अकिंचन में इतना ही अभ्यास करना है कि प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में प्रेम का भाव रहे, किसी के उपयोग करने का भाव न आवे। अपने जीवन में यही रहता है कि सब जैसे सारा संसार हमारे अनुसार चले, हमारे उपयोग के लाने हैं, हम जैसा चाहें सो उसका उपयोग करें। नहीं भाई, हमें ऐसी अपेक्षा दूसरे से नहीं रखनी चाहिए। हमारे सुख दुख में दूसरा निमित्त तो हो सकता है, लेकिन हमें सुखी दुखी नहीं बना सकता। ऐसा भाव रख करके अपना कर्तव्य यदि अपन करते हैं तो इस आकिंचन धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। आकिंचन धर्म तो तभी आएगा जब अपने भीतर निश्चिंतता और निर्द्वंद्वता आएगी। जब अपने सुख दुख को भोगने वाला मैं अकेला हूं तो दूसरे से शिकायत का भाव नहीं होगा कि देखो हमारे ऊपर तो दुख आओ, फलाने ने दुखी कर दिया। वृद्धावस्था में अक्सर बड़े बूढ़े लोगों की अपने बच्चों से शिकायत होती है कि देखो जरा भी सेवा नहीं कर। भाई तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो शत्रु भी सेवा करेगा, और अगर पुण्य का उदय नहीं है तो सगा भाई भी बेटा भी सेवा के लिए उपस्थित नहीं होगा। सो ऐसी अपेक्षा रख के और दीनहीन क्यों होते हो? और मेरा तो सब खूब सेवा करते हैं, ठाट बाट है मेरा, तो ऐसा अहंकार करके अपना संसार क्यों बढ़ाते हो? न अहंकार करना, न दीनता का भाव आना कि मेरा तो कोई नहीं है या कि मेरे तो सब हैं। ये दोनों ही दीनता और अहंकार के भाव तो संसार बढ़ाने वाले हैं। मैं अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं हूं, मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हूं। ऐसा यदि अपने भीतर भाव आ जावे और अपना कर्तव्य मान करके अपन कार्य संपन्न करें अपने जीवन को अपन सार्थक बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। मिथिला नरेश थे, राजा साहब थे, उनको एक बार दाह ज्वर हो गया, बड़ी दाह उनको उत्पन्न हुई। एक तो ज्वर भी था और फिर दाह ज्वर अत्यंत वेदना, बड़े शीतोपचार सब किए गए। राजा साहब थे, सो किसी ने वैद्य ने बताया कि राजा साहब को लेप लगाया जाए चंदन का। अब इतना सारा चंदन कौन घिसे? तो जो रानियां थी राजा साहब के, उनने कहा कि यह कारी तो हम कर देंगे, हम चंदन घिसेंगे जिससे कि राजा का लेप तैयार हो सके लगाने के लिए चंदन का। सो लेप घिसा जाने लगा, बाजू के कमरे में से लेप घिस रहे थे सब रानी लोग। सो उन्होंने जो जेवर और चूड़ियां पहन रखी थी उन सब की बहुत ध्वनि उत्पन्न होने लगी, आवाज आने लगी। तो राजा और बेचैन हो गए कि ऐसा कैसा लेप बना रहे हो, इतनी आवाज आ रही है। मंत्री ने जाकर के रानी साहबा से कहा कि राजा साहब का लेप तो अपन तैयार कर रहे हैं, लेकिन राजा साहब को पीड़ा और हो रही इस ध्वनि से। रानी साहबा के मन में विचार आया कि क्या उपाय हो सकता है। सो थोड़ी देर के बाद वो उपाय करने के बाद जब चंदन घिसा जाने लगा तो ध्वनि नहीं आई। तो अब राजा साहब को दूसरा विकल्प कि क्यों, मेरे लिए जो वैद्य ने चंदन घिसने को लगाने को बोला था वो घिसाने जा रहा क्या? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब चंदन का लेप तो वैसा ही जैसे पहले घिसा जा रहा था वैसे ही घिसा जा रहा है, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? तो मंत्री ने कहा कि रानी साहबा ने और सब रानियों ने अपने हाथ के जेवर उतार करके एक एक चूड़ी धारण कर ली है, अब आवाज तो दो में टकराने से आती है, एक में कहां से आएगी? सो आवाज नहीं आ रही। बस राजा साहब को इतना ही पर्याप्त था। मन में विचार आया कि अरे इस बंद की वजह से ही सारा संसार है, सारा झगड़ा तो दो का है, मैं एकाकी हो जाऊं तो अत्यंत सुखी हो सकता हूं। सो मन ही मन संकल्प कर लिया कि यदि इस ज्यादा ज्वर से मैं मुक्त हो जाऊं तो पानी पात्र में भोजन करूंगा, एकाकी ही विचरण करूंगा। सो रात निकली और सुबह सुबह दाह ज्वर शांत हो गया और राजा साहब ने तो संकल्प ही कर लिया था कि मैं समस्त द्वंद की वस्तुओं को छोड़ करके, पर्वदार्थों को छोड़ करके एकाकी विचरण करूंगा। सो एक अकेले वो मुनि बन करके अपना कल्याण करने लगे। वास्तव में तो अपने भीतर भी ऐसे ही एकाकी पने का भाव होना चाहिए, तब अपने जीवन में आकिंचन आएगा। लेकिन घर गृहस्थी में रह करके भी आकिंचन की साधना करना चाहे तो क्या कैसे करें? जो भी घर गृहस्थी के कारी हैं, समाज के देश के कारी हैं, उन सब में अपन निस्वार्थ भाव से उन कार्यों को संपन्न करें। कोई अपेक्षा नहीं है किसी से, ना किसी की उपेक्षा है, सबके प्रति समता भाव है। अगर ऐसी साधना अपन अपना कर्तव्य मान के घर गृहस्थी के दायित्व में कार्य करें तो इस आकिंचन का भाव अपने भीतर भी थोड़ा थोड़ा अपन अनुभव कर सकते हैं। एक और घटना आती है राजा साहब की है। तो राजा साहब अपने महल में खड़े हुए देख रहे थे, बाहर झांक रहे थे। उन्हें सामने महल के एक वृक्ष के नीचे साधु बाबा जी बैठे दिखाई पड़े। ठंड का समय था, राजा ने सोचा कि इतनी ठंड में पेड़ के नीचे कैसे रात व्यतीत करेंगे, चलो अपने महल में ले आए। मन ही मन विचार आया कि देखो बाबा जी हैं तो मुश्किल है कि महल में आए, फिर भी एक देख लें अपन। सो पहुंचे बाबा जी के पास और कहा कि बाबा जी ठंड बहुत है, न हुई तो हमारे महल में रात व्यतीत करो। बाबा जी तैयार हो गए। अब जैसे ही तैयार हुए सो राजा साहब के मन में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हुए, अरे कैसे कैसे बाबा जी हमने तन्न कही कही और महल में आवे तैयार हो गए, दोनों तरफ की बात। आ गए बाबा जी महल में और रहे ठाट बाट से, जाने का नाम ही नहीं लिया। एक दिन दो दिन 15 दिन महीने 6 महीने व्यतीत हो गए। अब राजा साहब के मन में आया कि अब मुझ में और साधु में कोई अंतर नहीं है, देखो महल में ही मैं रहता हूं और महल में ही साधु बाबा जी रह रहे हैं, सब सुख सुविधाओं के बीच में क्या अंतर है। सो एक दिन बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी आपको महल अच्छा लगा? बाबा जी हंसने लगे, कुछ नहीं कहा, आप रहो बाबा जी महल में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तो मैं जैसे महल में रहता हूं वैसे ही आप भी महल में रह रहे हो, मुझ में और आप में ज्यादा अंतर नहीं है। इतनी बात सुन करके बाबा जी ने कहा कि अपन थोड़ा नदी किनारे टहल के आए, उठाओ हमारा कमंडल। सो कमंडल उठा करके राजा साहब बाबा जी के पीछे पीछे चले। सो बाबा जी नदी के किनारे पहुंच गए और नदी पार करने के लिए जब राजा से कहा, सो राजा कहते हैं कि नहीं, महल में कोई नहीं है, हमें उसकी रक्षा के लिए पहुंचना आवश्यक है। फिर बाबा जी हंसने लगे, अब राजा कैसे लौटे अगर परमिशन नहीं हो बाबा जी की, तो बाबा जी के साथ में नदी के उस पार भी चले गए। फिर बाबा जी से कहा कि लौट चलो बाबा जी अब महल में, वहां अकेला है सब महल पड़ा हुआ है, उसकी रक्षा कौन करेगा। सूर्य बाबा जी ने कहा कि राजन महल तुम्हारा है, तुम रक्षा करो, कमंडल मेरा मुझे दो, मैंने अपना महल माना ही नहीं, मैं भले ही उसमें रहा हूं लेकिन महल मेरा है यह भाव मेरे भीतर आने नहीं दिया मैंने, और तुम तो जंगल में खड़े हो लेकिन तुम्हारे भीतर महल रखा हुआ है, यह जो मनुष्य का भाव है, चाहे शरीर के प्रति हो चाहे परद्रव्यों के प्रति हो, दुख का कारण तो वही है, सुख तो आकिंचन में है, एकाकी पने में है। ऐसा अगर अपन विचार करके अपने कर्तव्य मान करके सारे कार्य करें और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें तो ही ये आकिंचन धर्म अपने जीवन में आ सकता है। अपन ऐसा अभ्यास करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जब विषया में रच पच कर गाफिल में क्या मैं सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, अब निशा का सन्नाटा बन में बन चारी चलते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की घड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां
भव वंदन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मनिया
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
उदक चंदन तंदुल पुष्प के चारों सदीप सुधूप फल अर्घ के धवल मंगल
गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ
ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य मुंशी क्षमासागर जी महाराज परम पूज्य मुंशी बाबीसागर जी महाराज के चरणों में सत्सद बार नमस्तु हरम पानी की सुवर्ण
मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो मानु सेवा कानी
क्षमो द्रव्य जान वेखो बंद विधि भान वेखो स्वपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है
अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो काहू न सताय वेखो भव्य उरयानी
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही की निवाणी
रावणी सराम श्रद्धा ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रहती
इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति का विवेकवान भी होना बहुत जरूरी है। विवेक के मायने यह है कि एक ऐसा ज्ञान जो भले बुरे के लिए हमें अलग अलग पहचान करा सके, एक ऐसी समझ जो हमें ये बता सके कि हमें किस दिशा में अपने जीवन को आगे ले जाना चाहिए और किस चीज से हमें बचना चाहिए। ऐसा ये विवेक जो हमारे भले बुरे का हमें पहचान कराता है और हमें इतना ही नहीं बुरे से बचा लेता है और भला करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा विवेक हमारे जीवन में जागृत हो। और एक और चीज कि हमारी कोई भी क्रिया हम जो करें वो विवेक शून्य नहीं होनी चाहिए। हम सुबह से शाम तक अपने संसार के काम भी करते हैं और अपने जीवन के कल्याण के लिए भी कुछ काम करते हैं, वाणी मन और शरीर सबसे करते हैं। तो जो भी हम करें चाहे वो संसार में किया जाने वाला कार्य हो या कि वो धर्म क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य हो, हम ये सावधानी रखें कि उस कार्य से हमारा और दूसरे का उपकार होता हो तो ही हम उस कार्य को करें। अपने और दूसरे को क्षति पहुंचाने वाले कार्य हम ना करें, ऐसा विवेक हमारे मन में हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे श्रद्धा को मलिन करने वाले हैं, जो हमारे अहिंसा धर्म को दूषित करने वाले हैं, उन कामों को हम ना करें। हमारी श्रद्धा को मलिन करने वाली है हमारी अपनी मूर्ताएं, चाहे वो लोक में प्रचलित मान्यताएं हों या कि हमारी अज्ञानता के चलते हमने देव शास्त्र गुरु का ठीक स्वरूप जानते हुए भी जो देव गुरु शास्त्र नहीं है, जो अभी संसार में ही अपना संसार बढ़ाने में लगे हैं, उनको भी हमने ब्रह्मवश और सच्चे देव मान करके या गुरु मान करके उनकी प्रशंसा करी हो तो उसे भी हमें संशोधित करना चाहिए। और हिंसा हमारे कार्यों में ना हो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके आगे बढ़ते हैं आज अपन, तो देखें कि श्रद्धा को तोड़ने वाली चीज है अहंकार। ये ऐसी चीज है, ये ऐसी कमजोरी है हमारे भीतर जो हमारी श्रद्धा को धीरे धीरे करके नष्ट कर देती है। और भी बहुत कषायें सब हैं चारों प्रकार की, लेकिन उसमें से ये जो मान कषाय है, अहंकार है, वो हमारी श्रद्धा को तोड़ने वाला है। इसलिए आठ प्रकार के मद या घमंड या अहंकार से हमें अपनी श्रद्धा को बचाए रखना चाहिए। अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की आकांक्षा रखना ये अहंकार कहलाता है। अपनी योग्यता के सम्मान की इच्छा रखना ये अभिमान कहलाता है। आप समझ रहे हैं, जब हम अपनी योग्यता से अधिक अपना सम्मान चाहते हैं तो उसके पीछे क्या भाव छिपा रहता है, दूसरे के तिरस्कार का। और अपनी योग्यता का सम्मान चाहते हैं यह अभिमान कहलाता है, इसके पीछे भी किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के तिरस्कार का भाव छिपा ही रहता है। जहां अहंकार है वहां दूसरे के तिरस्कार का भाव छिपा ही है, बिना उसके होता नहीं है। महान कषाय अगर है तो दूसरे को डिफीट करने का, दूसरे को गिराने का, दूसरे के तिरस्कार करने का भाव भीतर में छिपा ही रहता, दिखता नहीं, सहसा नहीं दिखाई पड़ता, मैं बड़ा हूं ये साबित करने के लिए दूसरे को छोटा किए बिना तो संभव ही नहीं है। अपनी लकीर बड़ी करने में जो हम जबरदस्ती अपनी योग्यता के बिना पुरुषार्थ करते हैं तो वो ये होता है कि दूसरे की मिटा करके अपनी बड़ी होती, उसके बिना तो होती नहीं। वरना अपनी लकीर बड़ी करने वाले को अहंकार करने की आवश्यकता नहीं आएगी, वो तो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा। इसलिए जब जब भी हमें अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की इच्छा अपने मन में जागृत हो तो सावधान होना चाहिए, और अपनी योग्यता के सम्मान की इच्छा जागृत हो तब भी सावधान रहना चाहिए। तीसरी एक अवस्था और है जिसमें कि हम अपनी योग्यता का सम्मान तो नहीं चाहते लेकिन हम अपमान भी नहीं चाहते, वो अवस्था है स्वाभिमान की। वो एक बार फिर भी ठीक है लेकिन वो स्वाभिमान भी कब अभिमान बन जाता है इसकी सावधानी रखना। कई लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है, तो इसका मतलब है कि ये आपका अभिमान है, ये कहना पड़ा आपको। हाँ, ये बहुत सावधानी, अभिमान और स्वाभिमान के बीच बड़ी बारीक सी लाइन है, और उसमें हम अगर गड़बड़ा जाते हैं तो हम अभिमान और अहंकार में उतर जाते हैं, फिर हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है। और एक स्थिति बहुत अच्छी है जो निराभिमान की स्थिति है, निरंकार की स्थिति है, जिसमें न सम्मान की इच्छा है न अपमान होने पर कोई संक्लेश है। वो तो कोई विरले ही जीव जिसकी दृष्टि वाकई में समीचीन हो गई है उसको सम्मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वास्तव में वही अवस्था पाना चाहते हैं, उसके लिए ही हमारा अपना जो भी हम अपने जीवन में करते हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अहंकार कितने तरह से हमारे भीतर प्रवेश करता है, कितने रूपों में प्रवेश करता है, ये हमें थोड़ा सा देख लेना है, ताकि जब अहंकार हमारे भीतर प्रवेश करे तब हम उसे समझ सके। अपना अहंकार अपने आप को ही समझ में नहीं आता, दूसरा अहंकार कर रहा है तो हम कहते हुए पाए जाते हैं कि देखो कितने अहंकारी हैं, कितने मान है इनको, लेकिन अपन जब मान करते हैं, अपन जब अहंकार करते हैं तो अपने को नहीं समझ में आता, अपने को लगता हम ठीक कर रहे हैं। इसलिए जब भी हमारे भीतर ये अहंकार प्रवेश करे और हमारे मन को घेरे हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे बच्चे लोगों को कहा जाता है कि कोई प्रयोग कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ प्रिकॉशंस भी ले लेना, सावधानियां रखना, ताकि तुम्हें प्रयोग के ठीक ठीक निष्कर्ष मिल सके। अपने जीवन में भी जब अपन एक प्रयोग कर रहे हैं कि मेरी श्रद्धा मेरे ही अहंकार से नष्ट हो जाती है, जैसे कि किसी को दीपक हाथ में मिल जाए जला हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर की हवाओं से नहीं बुझता, हमारी ही सांसों से बुझ जाता है। ये बड़ा सावधानी का मामला, ऐसा ना हो कि वो दीपक जो श्रद्धा की रोशनी हमें मिली है वो हमारी ही सांसों यानी हमारे ही अहंकार से बुझ ना जाए। इसलिए हम समझें उस चीज को कि हमारे भीतर किन किन रूपों में अहंकार आ सकता है। आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठने पर वे हमें बताते हैं कि वैसे तो अहंकार के बहुत रूप हैं लेकिन 8 रूपों में अहंकार हमारे जीवन में प्रवेश करता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वस्बपु अष्टावाशित मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया। जो इसमय यानी अहंकार से जो पार हो गए हैं उन्होंने ये 8 भेद बताए हैं हमारे भीतर अहंकार आने के। इनके माध्यम से हमारे मन में अहंकार आ सकता, हमारी विनय वो नष्ट हो सकती है, हमारी श्रद्धा उससे दूषित हो सकती है। इसलिए जिसकी दृष्टि निर्मल है, जो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, वो इन माध्यमों से होने वाले अहंकार से बचे। ज्ञान का अहंकार बहुत जल्दी आता है, इसलिए सबसे पहले लिखा है ज्ञानम। ज्ञान के माध्यम से 4 बातें अपन ज्ञान की सीख लेते हैं, तो दूसरे को अज्ञानी साबित करने का मन होने लगता है। ये सबसे खतरनाक चीज। हमारे अपने ज्ञान से हम अपना आत्म कल्याण कर लेंगे, वो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, लेकिन होता जो है कि चार बातें धर्म की या चार बातें हम कहीं से कोई ज्ञान करके ज्ञान की उपलब्ध कर लेते हैं, तो हम फिर चार लोगों के बीच ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है और तुमसे ज्यादा कोई अज्ञानी नहीं, हमें जानत सब कछु, तुमका जानत कछु, पढ़े लिखे हो नहीं है। ऐसा मन में कहते नहीं है लेकिन प्रदर्शित अपने अंदर यही करते हैं, सामने वाले को डिफीट करने के लिए, उसकी बात को तर्क देकर के नीचा करने के लिए हम अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। हमारे अपने सयोगसम का प्रयोग अगर हम देखें दिन भर में, तो हम पाएंगे कि हम अपने ज्ञान से दूसरे का तिरस्कार ही करते हैं, दूसरे को नीचा ही दिखाते हैं। यही तो हमारे ज्ञान का अहंकार है और क्या। जैसे कि कोई अगर किसी को कहे कि ये चीज ऐसी नहीं है, अच्छा आर्यन दो, जैसे तुम्हें जाना तो हमें सो मालूम है, ये भाव आ जाता कि नहीं आ जाता। कोई कुछ भी कहे, थोड़े से आहार देते समय ही कोई कहे कि थोड़ा सा यहां से आप, हमें मालूम है हमने बहुत आहार दिए हैं, तुम्हें नहीं आया कछु हुए आ गए, ऐसा जल्दी से अपन कह देते। कोई रास्ते से अपन को ठीक ठीक स्थान बताएगा कि भैया ऐसे में बैठो, ऐसे बैठ जाओ, तब भी अपने मन में आ जाती ये चीजें। ये क्या चीज है? ये अहंकार का रूप है, वो ज्ञान के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर जाता। हमें विचार क्या करना चाहिए इस अहंकार को दूर करने के लिए। आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई पड़ रही? पानी के बीच में भी मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही असल में। हाँ, आचार्य जी ने बहुत तेज बारिश में एक बार आहार जी में प्रवचन बंद कर दिया था, मुझे वो घटना याद आ रही, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। क्योंकि उन्होंने, जब हम लोगों ने पूछा कि आपने बंद क्यों कर दिया, तो बोले हमें अपनी जो सहज आवाज है उससे ज्यादा तेज बोलना पड़ा तो अपने प्राणों का घात होगा, इसलिए बंद कर दिया। तो मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकता, अगर आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो मुझे बता दें, ठीक है, चलने दें। हमें ये विचार करना चाहिए कि जैसे अपन ने जीवन में अपने एमए किया, मान लो अब एमए किया अपन ने और उसके बाद पूरा जीवन अपना व्यतीत हो गया और अपना जीवन समाप्त भी हो गया, अब अपन दूसरी जगह चले गए, दूसरा जन्म हो गया, तो क्या वो ज्ञान साथ में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। अगर साथ में जाता होता तो फिर अनार का फिर से नहीं पढ़ना पड़ता, फिर तो अपन ये कहते कि हमें तो पहले से पढ़ के आप तो पीएचडी कर है। ऐसा होता है क्या? आज तक कोई भी इधर इधर कितने भी पढ़ा लिखा हो और मरण के बाद में फिर से उत्पन्न हो तो अनार से शुरू करना पड़ता। उस छोटे से क्षयोपशम ज्ञान का मैं अहंकार करूं, ऐसा विचार अपने भीतर आना चाहिए कि अरे इतना थोड़ा सा ज्ञान मेरे को है जो कि मेरे साथ भी नहीं जाता है, और फिर मैं उसका अहंकार करूं और अहंकार के चलते मैं दूसरे के ज्ञान का तिरस्कार करूं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर ऐसा भाव हमारे भीतर आ जाए तो ये अहंकार ज्ञान का अपने आप नष्ट हो जाता और हमारी ज्ञान के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति श्रद्धा बनी रहती। जब जब भी ध्यान रखना, जब जब भी दूसरे के अच्छे ज्ञान की बात सुनकर के उसकी प्रशंसा करने का भाव नहीं होता तो ये भी अहंकार ही है। हां, ऐसा होता है कई बार कि हम कहीं से कोई अच्छा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसकी चर्चा चल रही है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम ये इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे ही इसका बोलना बंद हो और मैं इन सब चीजों को अभी काट करके और ठीक कर दूं। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये सम्यक ज्ञान का अनादर है, फिर हमारा सम्यक ज्ञान धीरे से छूट जाएगा। इसलिए जहां पर भी सम्यक ज्ञान की चर्चा हो उसका अनादर नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना, और जो ज्ञानवान है उनका भी तिरस्कार नहीं करना, तब जाकर के हमारा ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाएगा और वो केवल ज्ञान में कारण बनेगा। आचार्य भगवंतों ने लिखा, जो विनय पूर्वक निरानस होकर अर्थात आलस छोड़कर इस जीवन में इस थोड़े से सर्वोपसम ज्ञान का अभ्यास करता है, उसका ये थोड़ा सा ज्ञान भी आगामी जीवन में केवल ज्ञान का कारण बनता है, लेकिन विनय पूर्वक होना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ और विनय के साथ में ज्ञान को हम हासिल करें तो हम उस ज्ञान के अहंकार से बच सकते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। आचार्य महाराज के जब आगम वाचना आचार्य महाराज के सानिध्य में 1980 में और शुरू हुई थी, सागर में पहली आगम वाचना हुई षटखंड आगम की, और बड़े बड़े विद्वान जिनमें से तो अब कोई भी नहीं रहा उस समय, वो सारे 6-8 विद्वान तो सबसे बड़े विद्वान थे और बाकी तो 50-100 विद्वान, उनमें से भी अब बहुत थोड़े बचे हैं। वो जो बड़े विद्वान थे वो तो नहीं रहे। वहां पर उस चर्चा के बीच में एक शब्द अटक गया, उसका मेन स्क्रिप्ट में क्या अर्थ होना चाहिए ये किसी को नहीं सूझ रहा। ऊहा पोह होता रहा, आचार्य महाराज भी चुपचाप सुन रहे हैं, सारे विद्वान अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, वो कह रहे हैं इसका अर्थ यहां तो ये होना चाहिए। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। वहीं पर बैठे हुए थे जिनेंद्र वर्णी, सब परिचित होंगे जिनेंद्र वर्णी से, 3 वर्णी प्रसिद्ध हुए अपने यहां पर, गणेश प्रसाद वर्णी जिनके मैं उदाहरण आपको उनकी सरलता के सुनाया करता हूं, बड़े वर्णी जी कहलाते थे, फिर मनोहर लाल वर्णी और फिर तीसरे नंबर पर ये जैनेन्द्र वर्णी। उन्होंने कोश लिखा है, जैनेन्द्र शब्द कोश, भारतीय ज्ञानपीठ से 4 वॉल्यूम, इतना 150 ग्रंथों को अध्ययन करके 17 साल में जिसे उन्होंने कंपाइल किया है, संकलित किया है, रीअरेंज किया है, जिसको कि आज कई लोग जो है देख भी नहीं पाते हैं, उसमें से ढूंढ नहीं पाते कि कौन सी चीज कहां मिलेगी, वो उनने इतना अधिक ज्ञान, उनका सर्वोपसम ज्ञान जिससे उन्होंने सम्यक ज्ञान की का आलोड़न करके वो रचना करी, वो भी वहीं बैठे लेकिन चुप है। मजा देखिएगा। अब अचानक आचार्य श्री का ध्यान चला गया तो आचार्य श्री ने धीरे से कहा कि वर्णी जी, आपने तो कोश लिखा है, आपको तो इस शब्द का अर्थ किस ग्रंथ में कौन सा है ये सब मालूम होगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और फिर क्या बोले कि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। आचार्य श्री ने कहा बहुत बहुत आप बोलिए। तो उन्होंने उसका अर्थ जो अलग अलग ग्रंथों में था वो सहर्ष बता दिया। जब वो अर्थ बताया तो सब समाधान हो गया। तो उसमें से जो एक पंडित जी थे वो एकदम बोले, अब जब आपको मालूम था तो हम लोग आधे घंटे से परेशान हो रहे थे, पहले क्यों नहीं बता दिया आपने। तो क्या बोले, इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े आचार्य महाराज के सम्मुख में क्या उस पर बिना कहे और अपने बीच में ज्ञान को बताऊं। ये है ज्ञान के प्रति विनय। नहीं तो अदजल गगरी छलकत जात, 4 बातें पता नहीं लगी और चर्चा कहीं चल रही तो बीच में शांत नहीं रह सकते, हमें मालूम हम बताएं ये चीज ऐसी। इससे बचना चाहिए हमें, बहुत ज्ञान को हासिल करके और अपने भीतर और धैर्य और अपने भीतर विनय बनाए रखनी चाहिए। और सम्यक ज्ञान और सामान्य ज्ञान की विशेषता यही है, अंतर दोनों में यही है कि जिसे सम्यक ज्ञान होता है उसे अहंकार न आकर के ये लगता है कि मेरा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है, उस केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो यह अत्यंत अल्प ही है। अपनी अज्ञानता का एहसास होता है अगर सम्यक ज्ञान हो जावे तो, और भौतिक ज्ञान होता है तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने का अहंकार हमारे भीतर प्राप्त उत्पन्न हो जाता। जब जब भी हम सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें तो भैया ये अपने भीतर देखते रहें कि हमें तो वास्तव में गौरव इस बात का होना चाहिए कि मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान का है, जो कि शायद ज्ञान है। ये तो थोड़ा सा मुझे मति शुद्ध ज्ञान हुआ है, वो तो शायद सम्यक ज्ञान है। मैं आपसे ज्ञान के अहंकार की बात करूं, कैसे अहंकार से हमारा ज्ञान ढक जाता है। मेरे अपने जीवन की घटना आपको सुनाता हूं। सन 1991 में सतना चतुर्मास में, और जब हम लोग डिस्कशन करने बैठते थे संघ का समाधान करने, तो इतवार का दिन था और मेरे हाथ में इतनी ढेर सारी पर्चियां थी, प्रश्न थे। मैं एक 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 प्रश्न का जवाब देता चला जा रहा था बिना रुके हुए, और उतने में एक पर्ची आई। मैंने उसे उठा करके जैसे ही पढ़ा, उसमें लिखा था कि अद्भुत है आपका ज्ञान, आप हर प्रश्न का बिल्कुल टू द पॉइंट और लगातार जवाब देते जा रहे हैं, लग रहा है कि सरस्वती मानो आपकी जिह्वा पर आके बैठ गई। ऐसा वो उनका उन्होंने प्रश्न नहीं था, उन्होंने प्रशंसा लिख के भेजी थी। मेरा ध्यान गया, मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर भी क्षण भर को ये लगा, ईमानदारी से क्षण भर को ये लगा कि हाँ मेरा ज्ञान तो है ही। आप आश्चर्य करेंगे कि उसके बाद वाले प्रश्न का उत्तर मुझे 30 सेकंड लग गए आने में, जबकि एक भी प्रश्न सामने आते ही उत्तर आधा प्रश्न पढ़ करके मैं दे रहा था, और फिर पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद 30 सेकंड बाद भी मुझे उसका उत्तर नहीं आ रहा। अपनी गलती तुरंत समझ में आई और मेरी आंख भीग गई। आचार्य महाराज को स्मरण किया कि मैंने व्यर्थ अहंकार किया, और उसके बाद फिर जो कहते हैं उत्तर आना शुरू हो गए। ये क्या चीज थी, क्षण भर के अहंकार ने ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया। हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करते समय अहंकार नहीं करना। अगर आने लगे तो उसको जीतने का प्रयत्न करना। जीतने का सीधा उपाय है कि याद कर लेना, गुरुजनों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मेरा अपना इसमें क्या है, आचार्य भगवंतों का उपकार है जिनके वजह से, और हमें दो बातें अपने कल्याण की सीखने मिली हैं, इसका क्या अहंकार करना, इसमें तो और विनय आनी चाहिए। ऐसा विचार अपने मन में आ जावे तो इस अहंकार से बच सकते हैं। पूजा जैसे ही यश ख्याति मिलने लगती है तो हमारे पैर फिर ठीक नहीं पड़ते जमीन पर, इसलिए आचार्य भगवंतों ने दूसरे नंबर पर लिखा कि जब श्रद्धा हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने लगे, तब सावधानी रखें कि संसार में मिलने वाली थोड़ी थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा और ख्याति लाभ इत्यादि का अहंकार मत कर लेना, क्योंकि कंचन कामनी छोड़ना जितना आसान है, ख्याति और पूजा और लाभ की आकांक्षा छोड़ना उतना ही कठिन है। ये इस कठिनाई को हम आसानी से हासिल कर सकते हैं ख्याति पूजा लाभ में ना पढ़ करके। आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें उसी थोड़ी सी ख्याति के लिए, वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, और उसके लिए क्या क्या चीजें, और नाम हम उनको देखते हैं प्रभावना का, प्रभावना नहीं, अपनी ख्याति का भाव कहीं ना कहीं पीछे छिपा रहता है। प्रभावना तो धर्म की होती है, लेकिन हम उस प्रभावना के बहाने अपने ही कहना चाहिए प्रशंसा का नेम एंड फेम, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे माने, ये जो हमारे भीतर का भाव है वो अहंकार, फिर इसके चलते क्या होता है, फिर कभी भी हम दूसरे की यश और ख्याति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर हम वैसा ही करने की कोशिश करेंगे जैसे कि कोई और किसी माध्यम से यश और ख्याति पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी वही उपाय करके और स्वयं ख्याति पाने की कोशिश करेंगे। ये चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है, सबकी अपनी कोशिश है। इससे क्या मालूम पड़ता है इससे मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे दृष्टि में उतनी निर्मलता नहीं है। बहुत सावधानी रखना। यश और ख्याति आचार्य जी कहते कि खाई के समान है। ख्याति क्या है? वो तो खाई है। एक बार गिरे तो फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कोई खाई में गिर जाता है। ये सावधानी। अब यश और ख्याति किसी भी माध्यम से मिल सकती है। धन पैसा खूब हो जाए, अच्छा बढ़िया मकान बना ले गृहस्थ, तो उसके लिए भी अहंकार आ सकता है। वो उसके लिए अहंकार अपने उस धन पैसे का आ सकता है। मुनि महाराज के लिए अपनी जो प्रशंसा है वो सुनकर के अहंकार आ सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है निंदा, से भी ज्यादा खतरनाक है प्रशंसा। आप ऐसा नहीं समझना कि निंदा ही खतरनाक है। निंदा से संकलेश होता है, लेकिन प्रशंसा से अहंकार आता है। और फिर अगर एक बार प्रशंसा हो जाए और फिर दूसरी जगह नहीं हो गए तो बड़ा भीतर भीतर मन संकलेशित होता, कहते तो कछु नहीं हो रही, होते तो इतनी भई थी। अरे बहुत बहुत झगड़ा है उसका। मैं तो बहुत समय से ये चीज अनुभव में देख करता हूं। अगर एक बार ये आदत बन गई कि मेरी सभा में तो कम से कम 10-25 हजार लोग हो तब मैं बोलूं, तब फिर उसके बाद अगर 10-25 है तो फिर भीतर भीतर बड़ा संकलेश होगा, फिर डमरू बनाना पड़ेगी जोड़ने के लिए। हां ये बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, तो थोड़ा आप गलत तो नहीं समझेंगे, मत समझिएगा। अब तो आपके साथ ही रहना है मुझे, तो आप ही गलत समझेंगे तो कैसे काम बनेगा बताइए। ये ऐसी चीजें हैं जो अपन अपने अंदर एनालाइज करें, किसी से कहने थोड़े जा रहे हैं। अपन अपने भीतर देख रहे हैं कि हां सचमुच कैसे कैसे भाव आ जाते हैं। हमें इस ख्याति पूजा लाभ से बचने के लिए हमेशा उपाय करते रहना चाहिए। वास्तव में तो देखा जाए तो पूजा किसकी होती है? पूजा तो होती है अरहंत और सिद्ध पद की। मैं वो पद प्राप्त करूं, मैं वो प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, आत्मस्थ हो जाना, अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाना, वो तो अरहंत और सिद्ध अवस्था में ही होगा। मुझे उसका गौरव होना चाहिए, क्योंकि मैं उससे प्राप्त कर सकता हूं, उस प्रतिष्ठा को, उस पद को प्राप्त कर सकता हूं। ये छोटे मोटे से प्रशंसा और पद मिलने पर मैं क्यों व्यर्थ में अहंकार करूं, और उस अहंकार के चलते दूसरे का तिरस्कार करने का भाव आ जाए। ये तो मेरी श्रद्धा को मलिन बनाने वाली चीजें हैं। पूजाम ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम। कुल कहलाता है वो अपने, मैं भूल जाता हूं इसमें, पिता के वंश को कुल कहते हैं और माता के वंश को जाति कहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि अपने पिता के कुल में या कि पिता के वंश में या माता के वंश में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो तो हम उसे लेकर के भी अहंकार कर लेते। इससे ही बचना चाहिए। हम तो ऊंचे कुल के हैं। ऊंचा कुल कौन सा है? जहां रत्नत्रेय की परंपरा है, तब फिर अहंकार करने की आवश्यकता क्या है? अपने सौभाग्य से तो अपने आप को और अधिक गौरवान्वित करना चाहिए, अहंकार थोड़ी करना चाहिए। हम उस परंपरा के हैं जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की है। हम तो उस कुल और उस जाति के हैं। ये छोटी छोटी सी जो जातियां हमने बना ली हैं, जो कुल बनाए हैं हमारे अपने संसार में, उनका क्या अहंकार करना, क्या ऊंचा कुल और क्या नीचा कुल। जिसका आचरण खोटा है उसका कुल और जाति सब नीचा है, और जिसका आचरण ऊंचा है उसका कुल और जाति, और जिसका आचरण ऊंचा है वो अहंकार काय को करेगा? अहंकार करना तो अपने आप को नीच कुल की तरफ ले जाना है। पर आत्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्चादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्। जब जब मैं अहंकार करूंगा तो मैं